श्लोक संख्या 12 नत्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्ववयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्लोक संख्या 11 से 30 तक क्या बताया गया है?
नॉलेज,
ज्ञान, दिव्य ज्ञान। भगवान इस बार जो बोलना शुरू किए हैं वो उपदेश देने के लिए शुरू किए हैं। ये 11 से 30 तक जितने श्लोक हैं, इन सारे श्लोक में भगवान ज्ञान दे रहे, उपदेश दे रहे हैं। और क्या है ये 11 से लेके तो 30 तक श्लोक? तो पहले 11वें श्लोक में हमने चर्चा की थी, उसमें था नानु शोचन्ति पंडितः। पंडित जैसी बात तो करते हो परंतु शोक ऐसी बातों पे करते हो जिस पे करना ही नहीं चाहिए, और जिस पे करना चाहिए उसके ऊपर शोक नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान ने 11वें श्लोक में बताया है कि किस बात पे शोक करना चाहिए। उसी बात का वही उपदेश को आगे बढ़ाते हुए अभी इस श्लोक से भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं 30वें श्लोक तक। तो इस श्लोक में नत्वेवाहं जातु, ये श्लोक बहुत महत्व का है, अतिशय महत्व का है। संपूर्ण गीता के ज्ञान का यह लगभग आधार है। यदि मुझे दिल्ली जाना है और मैं वाशी के स्टेशन पे खड़ा हूं और सोच रहा हूं कि यहां से मुझे दिल्ली जाना है, जो ट्रेन आएगी वो मुझे कहां ले जाएगी? दिल्ली ले जाएगी। तो वाशी स्टेशन पे एक ट्रेन आ गई, मैं उसमें बैठ गया और वो ट्रेन पहुंच गई जहां पहुंचना था। कहां जा सकती है वाशी स्टेशन से दिल्ली? जा सकती है? नहीं जा सकती कोई भी ट्रेन। लेकिन मैं उसमें बैठ गया ये सोच के कि ये दिल्ली जाएगी, उस ट्रेन का डेस्टिनेशन अंतिम जो स्टॉप है वो आ गया, मैं उतर गया, समझ बैठा यही दिल्ली है। क्यों? क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था। ट्रेन में बैठा, ट्रेन से जर्नी किया, उतर गया, अब ये दिल्ली है। ऐसा चलेगा? पहला ही जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से ट्रेन दिल्ली के लिए छूटती है वो ट्रेन स्टेशन पता होना बहुत जरूरी है। जहां से ट्रेन छूटती है, परंतु यही पता नहीं है कि दिल्ली की ट्रेन कहां से छूटती है। और कोई भी स्टेशन पे जाके कोई भी ट्रेन में बैठ जाता और सोचता हो कि अभी मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। तो प्रभुपाद महाराज ने तात्पर्य में इसी बात को कहा है कि बहुत से लोग, बहुत से संप्रदाय क्या करते हैं, अनेकों प्रकार की थ्योरी बनाते हैं भगवद गीता के आधार पे और कहते यही दिव्य ज्ञान है। वास्तव में वो दिल्ली है, वो दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली की ट्रेन उन्होंने नहीं पकड़ी है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही पता नहीं है कि कौन से ट्रेन में बैठना है। तो जिस जो ट्रेन दिल्ली में जाती है उसी ट्रेन में बैठना है, और वो ट्रेन कौन से स्टेशन से जाती है वो स्टेशन पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टेशन से काम चलेगा नहीं, दिल्ली कभी आएगी नहीं, दिल्ली हमेशा दूर रहेगी। दिल्ली दूर है कहते नहीं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पूरा तत्व पूरा आधार इस श्लोक में है। यदि ये नहीं समझा तो बार बार पूछिए नहीं समझा क्या कह रहे हैं, अन्यथा पहले ही दिन से या आधार से ही शुरुआत से ही गलत दिशा में हमारी ट्रेन चलती रहेगी। और गलत दिशा में हम जाते रहेंगे तो सत्य से, जो वास्तविक सत्य है, उस सत्य से हम दूर दूर एवरी फ्राइडे दूर 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 जाते रहेंगे। इसलिए पहले ही से ही राइट ट्रेन राइट ट्रैक राइट प्लेस। तो यदि कुछ समझता नहीं है इस श्लोक में तुरंत पूछिए, परंतु ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कि क्या कहा है भगवान ने इस श्लोक में। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जीवात्मा भगवान का अंश है और यह नित्य है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक क्यों नहीं करना चाहिए, ग्यारहवें अध्याय ग्यारहवें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने, क्यों, क्या जो शोक करने जैसी बातें नहीं है उसके ऊपर क्यों शोक करते हो। बताया था आत्मा है वो तो नित्य है, वो जाता है लेकिन कहां जाता है, अब वो है इसलिए जाता है ना, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, कहीं तो भी गया है, कहीं तो भी गया है, मतलब कहीं तो है खत्म नहीं हुआ है, तो जो कहीं पे है उसके ऊपर क्या शोक करें। और जो शरीर है वो तो जाना ही है 100%, वो तो खत्म ही होने वाला है, तो जो खत्म ही होने वाला है उसके ऊपर क्या शोक करेंगे, गारंटी है उसकी खत्म होने की, खत्म होने की गारंटी है शरीर की, तो उसके ऊपर क्या शोक। इस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने बहुत सारी चर्चा की थी, अब इसी श्लोक में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश है, और भगवान कैसे है, भगवान नित्य है, इसलिए जीवात्मा भी क्योंकि नित्य का अंश है, इसलिए प्रभुपाद महाराज ने तात्पर्य में कहा है नित्यो नित्यानाम, कठोपनिषद के श्लोक की चर्चा की है प्रभुपाद महाराज ने, है ना, ये नित्य है और शरीर अनित्य है, तो जो नित्य है उसका हमने चिंता करना चाहिए, उसके बारे में हमने समझने का सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात को कहने के पश्चात अर्जुन एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्जुन के मन में अनेक तर्क उत्पन्न होते हैं, बहुत तर्क कर रहे हैं अर्जुन, जब भगवान कहते शोक नहीं करना चाहिए, जीव तो मेरा ही अंश है, भगवान का ही अंश है, तो अर्जुन क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी जब शरीर बदलता है तब दुख तो होता है ना, है कि नहीं, ऐसा पूछ सकता है ना अर्जुन। अर्जुन का आगे का तर्क ये हो सकता है कि लेकिन शरीर जब बदलता है तो दुख तो हो सकता है ना, तो भगवान क्या कहते हैं उसके ऊपर 13वें श्लोक में, आगे के श्लोक में भगवान इसका उत्तर देंगे। भगवान कहेंगे कि जब हम छोटे थे शिशु के रूप में थे, शिशु से हम कुमार अवस्था में आ गए, वो शरीर छोड़ दिया तब तो दुख नहीं हुआ, फिर कुमार से युवा अवस्था में आए, वो फिर कुमार का शरीर छोड़ दिया, फिर भी दुख नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जब इतनी बार हम शरीर छोड़ते आए हैं तब कभी हमने दुख तो हमको हुआ ही नहीं है, क्यों नहीं हुआ है दुख। शिव की जो नैसर्गिक बदलाव है, निसर्गतः जो बदलता है उसका स्वभाव ही बदलना है, निसर्ग से ही वो बदलते रहता है, उस पे क्यों दुख करेंगे। वो दुख करने जैसा है, वो निसर्गतः ही बदलते रहे, स्वभाव से ही है। कोई व्यक्ति स्वभाव से ही बदमाश होगा तो उसको सुधारने का हम प्रयास नहीं करते, अरे छोड़ो उसको, स्वभाव से ही मूर्ख है कि नहीं, ऐसा करते हैं ना। तो जब स्वभाव ही ऐसा है बदलने का, तो उसके ऊपर क्या दुख करेंगे। जन्म लेते से ही तो बदलते ही आ रहे हैं, हर टाइम तो बदलते हैं, प्रत्येक समय तो बदलते रहते हैं। तो जो बदलाव जब नैसर्गिक बात है, तो ऐसे बदलाव का शोक क्यों करेंगे। भगवान उसके ऊपर उत्तर देते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि शरीर तो बदलता है तो दुख होता है, तो भगवान बोलते हैं वो तो नेचुरल है, नेचुरल बदलाव जो है उससे भी, बारिश आती है फिर बारिश चली जाती है और गर्मी होती है तो दुख करेंगे बहुत। अरे बारिश थी चली गई, अब कितना परेशानी है, रो। फिर गर्मी आ गई, अरे अरे बहुत मुश्किल है गर्मी के दिनों में, अब क्या करेंगे। क्योंकि ये नैसर्गिक बातें हैं, ये होती रहेगी, नैसर्गिक बदलाव का शोक नहीं करना चाहिए। नेचुरली जो बदलते रहता है उसका शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान उनको दूसरे अध्याय के 13 मतलब अगले श्लोक में कहेंगे। फिर उसके ऊपर अर्जुन क्या कह सकते हैं, जब भगवान, अब ये तो चल रही है डायलॉग, अर्जुन बोल प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, डायलॉग। जब भगवान ऐसा कहते हैं तो फिर अर्जुन तर्क करते हैं। फिर अर्जुन क्या तर्क करते हैं, तो कहते हैं कि पर हम जब युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था में जाते हैं तो दुख तो होता है ना, ये भी तो नेचुरल प्रोसेस है। शिशु अवस्था से कुमार और कुमार से युवा हो गए, ठीक बात है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है। कुछ लगता नहीं है, पर युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था में जाते हैं तो दुख होता है ना। अर्जुन तर्क करते हैं फिर भगवान के पास। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन किस लिए ऐसा तर्क करते हैं, किनके लिए तर्क करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं अर्जुन की, जब युवावस्था से वृद्धावस्था में जब हम जाते हैं तो दुख होता है, किसके लिए बोल रहे हैं यहां पे। नहीं, वो तो शरीर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कौन किस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए बोल रहे हैं। और दूसरी बात, वहां पे साक्षात वो देख रहे सामने द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य। द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य है, उनके आयु, उनका उम्र देख के वो बोल रहे हैं कि ये तो दुख होगा ही ना, इनको तो, हमको दुख नहीं होगा, पर ये मेरे तात्सुई है, ये मेरे आचार्य है, इनको तो, ये तो वृद्ध अवस्था में है, इनको तो दुख होता होगा ना, क्योंकि जब ये युवावस्था में थे तो ऐसे नहीं थे। जब युवावस्था में थे तो वो, उनका जो शरीर था वो शरीर सुख, इंद्रिय तृप्ति और शरीर सुख से वो अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे, उसी शरीर से वो सुख का अनुभव करते थे। अब वही शरीर वृद्ध हो गया तो उसी शरीर से वो दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। अर्जुन फिर तर्क करते, अब भगवान क्या कहते हैं, ये हम ब्रीफली आपको 30 श्लोक तक क्या चर्चा हो रही है वो बता रहे, विस्तार से फिर एक एक श्लोक का होगा। फिर इस यह चर्चा दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, अर्जुन 13वें श्लोक में कहेंगे कि ये तो वृद्धावस्था में तो दुख होता ही है, आप बोल रहे हैं कि शरीर शिशु से कुमार, कुमार से वृद्धा में होता है तो कुछ नहीं होता है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, परंतु वृद्धावस्था भी नेचुरल है, पर फिर दुख क्यों होता है, दुख तो होता ही है। तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने रखते हुए कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सगे संबंधी मित्र परिवार इनसे थोड़ा सा आसक्त रहता है, और जब आसक्ति होती है तो दुख कंपलसरी है, किसी भी वस्तु से आसक्त हो जाते हैं तो दुख बहुत कंपलसरी है। अपने घर का टीवी बंद होने दो एक दिन, और उसमें चलने दो आईपीएल, आईपीएल चल रहा है और आपके घर में का टीवी बंद हो गया एक दिन, कुछ बिगड़ गया, कितना दुख, इमेजिन कर सकते हैं कितना दुख होगा, भयंकर दुख होगा, क्योंकि उस टीवी से आसक्ति हो गई है। किसी भी वस्तु से जब आसक्ति हो जाती है, कोई भी वस्तु होने दीजिए या कोई भी व्यक्ति भी होने दीजिए, यदि किसी से भी आसक्ति हो जाती है तो समझ लीजिए ये दुख का कारण है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। दुख का कारण है, आसक्ति ही दुख का कारण है। लेकिन अर्जुन कहते वो तो होगी ना, आसक्ति तो होगी। तो भगवान उत्तर देते हैं, इस प्रकार से जो प्रकृति अस्थिर होती है, अस्थिर प्रकृति होने से जो दुखी हो जाता है, जो प्रकृति का स्वभाव नहीं समझता है, क्योंकि प्रकृति अस्थिर है और अस्थिर प्रकृति से जो आसक्त हो जाता है बिना उसको समझे, तो उसको तो दुख होगा। और ये दुख सभी को होगा, क्योंकि थोड़े बहुत मात्रा में सभी आसक्त है, और सभी थोड़े बहुत मात्रा में आसक्त होने की वजह से दुख होगा ही। इसलिए भगवान ने इस बिल्डिंग का नाम रख दिया है दुखालयम अशाश्वतम। गारंटी होगा ही दुख, पर भगवान कहते इसको ही तो सहन करना है। इसी को तो सहनशीलता कहते हैं। सहनशीलता किसको कहते हैं? एकादशी का उपवास निर्जला कर लिया तो हम सहनशीलता है, वो अच्छी बात है, परंतु सहनशीलता उसको कहते हैं। तब पता चलता है व्यक्ति कितना सहनशील है, जब ये जो आसक्ति है, जिस वस्तु के प्रति आसक्ति है, उस वस्तु से जब विरह हो जाता है, वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तब देख सकते हैं कि कितना व्यक्ति उथल पुथल करता है एकदम से, तो वो सहनशीलता नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है सहनशीलता। यदि मनुष्य सहनशील नहीं है तो वो प्राणी है, पशु है। पशु सहनशील नहीं हो सकते। हाँ, कुत्ते को थोड़ा सा हाँ करो तो बहुत जोर से हमारे ऊपर आ जाएगा दौड़ के। शेर, कोई भी प्राणी, पशु, वो सहनशील नहीं होते। मनुष्य सहनशील हो सकता है। तो मनुष्य को सहनशील होना है। सहनशील होना मतलब दुख को सहन करना। तो भगवान कह रहे कि यदि आपको वास्तव में जीत चाहिए, यदि आपको वास्तव में जय चाहिए, विजयी होना है, तो सहनशीलता सहन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दुख आएगा, उसको सहन करो, लेकिन आसक्ति को छोड़ो। एक तरह सहनशीलता है और एक तरह आसक्ति है। क्या चाहिए? जो मनुष्य है वो क्या लेता है? आसक्ति लेता है, सहनशीलता लेता है। माता सीता, जब रावण ने सीता, माता सीता का हरण किया और उनको उठा के लंका लेके गया, सब जानते हैं कथा। और जब उनका पैलेस, वो राज दरबार, क्या कहते हैं, महल, उन्होंने देखा, पूरा गोल्डन महल, सोने का है। सारे संसार की जितनी सुख सुविधाएं है सब उसमें है। ऐसी जगह पे आके खड़ा हो रावण, हो गया सीता, माता सीता आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, खड़ी हो गई वहां पे। अब इस जगह से एक रास्ता जा रहा है महल में और एक रास्ता जा रहा है अशोक वाटिका में। एक रास्ता सुवर्ण महल में जा रहा है, दूसरा रास्ता अशोक वाटिका में जा रहा है। एक रास्ता आसक्ति, दूसरा रास्ता टॉलरेंस, सहनशीलता। माता सीता ने कौन सा रास्ता अपनाया? सहनशीलता, दुख को सहन करना है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। भगवान की प्रेमी है तो उन्होंने आसक्ति का, आप शास्त्र के कई उदाहरण लीजिए, आसक्ति का रास्ता सभी संतों ने, भक्तों ने, साधारण भक्तों ने भी, आप कहेंगे ये तो बड़े बड़े उदाहरण है, पर साधारण भक्त भी सहन करते हैं, आसक्ति को छोड़ते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि आसक्ति को कम किया जाए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आसक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत भयंकर है। अनेक प्रश्न इसके ऊपर उपस्थित हो सकते हैं कि आसक्ति, जरूरत, नीड एंड वॉन्ट इंग्लिश में कहते हैं, आसक्ति कैसे समझे कि हम आसक्त हैं, कैसे समझे आसक्त है, और कैसे समझे कि ये हमारी जरूरत है। हमारी ये जरूरत है कि आसक्ति है, हाउ डू यू नो कैसे समझेंगे? कोई बता सकते कैसे समझ सकते हैं ये हमारी जरूरत है या आसक्ति? हम आसक्त तो हो गए हैं। आसक्ति के सिवा रह नहीं सकते। और मिलती है तो नहीं, लेकिन जब हमको मिलती है तो क्या होता है? जो वस्तु हमको चाहिए तब मिलती, जब कोई वस्तु नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है, विरह होता है। और जो वस्तु चाहिए और मिल जाती है तो क्या होता है? एक्साइटमेंट, आवेग बढ़ जाता है और भ्रम बढ़ जाता है वस्तुओं को एकत्रित करने का। एक वस्तु और वस्तुएं चाहिए और वस्तुएं चाहिए और वस्तुएं चाहिए। वस्तुओं को एकत्रित करने की जब लत लग जाती है ना, वस्तुओं को एकत्रित करने की आदत जब, व्यसन जब लग जाता है, इसको व्यसन ही कहते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारी आसक्ति बहुत बढ़ रही है, भौतिक आसक्ति बहुत बढ़ रही है। और वस्तुओं से दूर जाते जाते, वस्तु नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वस्तुओं को जितना दूर करते जाएंगे और भक्तों को, मनुष्यों को, भक्तों को, सत्संग को जितना करीब करते जाएंगे, समझना चाहिए कि आपकी आसक्ति कम हो रही है कि नहीं। लेकिन प्रश्न क्या आता है, इतनी क्या जल्दी है? इतनी घाई, इतनी जल्दबाजी, ये विचार आते। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कुमार अवस्था से ही आपको ये ज्ञान प्राप्त। जब कुमार अवस्था में इस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे, राइट स्टेशन पे राइट ट्रेन को पकड़ेंगे, तो बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे, काम फटाफट हो जाएगा। वो वास्तव में प्रगति हो जाएगी। और जब बुढ़ापे में ट्रेन में बैठेंगे तो इतना जर्नी होगा कि नहीं होगा, तकलीफें बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जब हम सत्संग की ओर जाते हैं, कृष्ण कथा सुनने की ओर हमारी रुचि बढ़ती है, एक दिन हमने यदि जप नहीं किया तो हमारे दिल में, हमारे हृदय में एक विचित्र प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, दुख होता है, तब समझना चाहिए कि हम थोड़े बहुत उस रास्ते पे चल रहे जहां से ट्रेन चलने वाली है। थोड़े बहुत अभी तक स्टेशन पे नहीं पहुंचे, पर उस स्टेशन तक जाने का रास्ता पता हो गया है, अभी जाएंगे। परंतु यदि ऐसे नहीं होता है, हर छोटी चीज, हर छोटी वस्तु, विषय या व्यक्ति, छोटे से छोटा वस्तु, छोटे से छोटा विषय या कोई भी व्यक्ति, यदि हमारे सत्संग में या हमारे आध्यात्मिक रुचि में बाधा आता है, हमको कन्विंस करता है कि अब ऐसा मत करो, आज के दिन ये फलाना ढिकाना करो, तो समझना चाहिए कि हमारी आसक्ति बढ़ रही है। तो सत्संग में आने की रुचि जब हमको हो जाती है तो समझना है कि हम आसक्ति से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और एवरी टाइम सत्संग में नहीं आने के कारण जब हमको मिलते हैं तो समझना चाहिए कि हम आसक्त होते जा रहे हैं, आसक्त होते जा रहे हैं। टेस्ट उधर ज्यादा अच्छी आ रही है, हायर टेस्ट इसलिए कहा गया है। कोई भी टेस्ट व्यक्ति उस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए इतना हैरान हो जाता है, एक बार उसको वो अच्छी लग जाती। इसके पहले हमने चर्चा की थी हम कि एक वो क्या क्या कहते हैं उसको, वो एक फूलों में से जो हनी का निकालता है, शहद निकालता है, मध, उसको क्या कहते हैं उस कीड़े को, भौरा। वो क्या करता है, फूलों में से, कमल के फूल से भौरा निकालता है, सॉरी मध निकालता है, भौरा। बड़ा टेस्ट अच्छा आता है, बड़ा आनंद आता है, वो टेस्ट लेते रहता, वाह, और टेस्ट ले रहा है, करते करते सूर्यास्त हो रहा है, उसका ध्यान नहीं है टेस्ट कितनी बढ़िया है, सूर्यास्त होने दो। और सूर्यास्त के बाद होता क्या है, कमल का फूल बंद हो जाता है। अब क्या होगा, निकल नहीं सकता वो बाहर। इतना आसक्त हुआ पूरे जीवन भर कि वो वस्तुओं का ही टेस्ट लेते बैठा। इतनी टेस्ट वस्तुओं में आती गई कि उसको पीछा ही छोड़ा नहीं, एक वस्तु के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पूरा जीवन भर। कब वो जीवन निकल गया पता ही नहीं चला। अब क्या होगा, अब तो रास्ते बंद हो गए, अब रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आसक्त, हम भगवान इसलिए कहते हैं कि आसक्त मत हो जाओ, दुख होगे लेकिन सहन करो। सहनशीलता जब बढ़ेगी तभी हमारी आसक्ति कम होगी। सहनशीलता नहीं बढ़ेगी तो आसक्ति कम नहीं होगी। पुरुषोत्तम मास का व्रत करना है, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास, सहनशीलता टेस्ट चाहिए, हम कितना सहन कर सकते हैं। हमारी चर्चा हुई थी क्या करना है अधिक मास में, पूरे नियम। रोज कम से कम 33 दंडवत प्रणाम करना है।
कितने तकलीफ होगी ना, 33 दंडवत प्रणाम आचार्य को, संतों को प्रणाम करना है इस मास में, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में। एवरी डे रोज संत जो है हमारे आचार्य, शुद्ध भक्त, भगवान, भगवान के परिकर, कम से कम 33 मिनिमम दंडवत प्रणाम करना है। तपस्या है पर कष्ट भी है, दुख भी है, पर सहन करना पड़ेगा। शारीरिक, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, इसको क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। ये जो जिम है, ये भौतिक जिम जो होते हैं 12 महीने खुले रहते हैं, 12 रोज बुलाते हैं, पर ये स्पिरिचुअल जिम है।
3 साल में एक ही महीना खुलता है, 3 साल में एक ही बार 1 महीने के लिए खुलता है। उस टाइम जो एक्सरसाइज करेगा उसके पूरे जीवन, पिछले अगले ये सारे जीवन शुद्ध सुदृढ़ और सात्विक हो जाएंगे। पर करना क्या है, इसके लिए सहन करना है। भगवान अर्जुन को यहां यही बता रहे, भैया सहन करो, इतना तो दुख आएगा क्योंकि इसका नाम ऐसे है, इस दुनिया का, इस जगत का नाम ऐसे ही है, इसलिए थोड़ा सहन करो। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, फिर अर्जुन भगवान कहते हैं कि भाई तुम ऐसा ज्यादा सोचो मत, आत्मा तो नित्य है, वो नित्य वस्तु को कभी अनित्य नहीं होता है, उसको कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्यों दुख कर रहे हो, सहन करो, कोई अर्थ नहीं है दुख करने का। शरीर भी अनित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा अनित्य है, पहले भी भगवान बता चुके हैं। अब और एक बात बताते हैं भगवान, दूसरे अध्याय के मतलब 16वें श्लोक से लेके तो 18वें श्लोक में भगवान और एक बात बताते, देखो अर्जुन अभी समझो, तुम युद्ध नहीं करोगे और ये कौरव को नहीं मारोगे तो भी इनकी मृत्यु तो आने वाली है ना, तुमको क्या लगता है मरेगे नहीं? द्रोणाचार्य भीष्माचार्य इनको मृत्यु नहीं है ऐसा लग रहा है तुमको, तुम बाण नहीं चलाओगे, तुम ही खुद कह रहे हो कि वृद्धावस्था में है, कभी भी इनकी मृत्यु आ सकती है, तुम युद्ध नहीं करोगे तो इनको मृत्यु नहीं आएगी क्या? मृत्यु तो आएगी। तो इसलिए भगवान उनको समझाते हैं कि तुम आत्मा का जो नित्य है उसका विचार करो, वो कभी मृत्यु नहीं होता है, इसलिए दुखी मत हो जाओ। किस बात पे दुख करना है तुमको ऑलरेडी बताया है 1वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, किस बात पे दुख करना है व्यक्त, शोक किस बात पे करना है 11वें श्लोक में हुआ है। शोक किस बात पे करना है और किस बात पे शोक नहीं करना है, तो शोक करने लायक कौन सी बातें हैं? क्या आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, डर डर के मत, जोर से बोलिए, सही उत्तर है आपका। सबसे बड़ा शोक कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार 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 चल रहा है, कभी कुत्ते हो रहे हम लोग, कभी गाय हो रहे, कभी बैल हो रहे, कभी मनुष्य भी हो जाते हैं, कभी और कुछ हो जाते हैं, बार 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 बार। कपिल मुनि का हमने उदाहरण लिया था भागवतम में, 3rd स्कंद में बताते हैं वो कि कितना दुख है जन्म लेने का, फिर भी लेते जा रहे, ये सबसे बड़ी शोक की बात है। इसके ऊपर शोक करना चाहिए, मृत्यु के ऊपर ये शरीर का त्याग होगा और ये होगा, इसके ऊपर नहीं, ये जन्म हो लेना पड़ेगा, इसके ऊपर टेंशन है। फिर से जन्म लेना पड़ेगा प्रभु जी, फिर से सारी प्रोसेस, और फिर कौन से गर्भ में होगा जन्म ये भी पता नहीं है, कौन से योनि में जाएंगे पता नहीं है। तो शोक की तो बात वो है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि शोक मत करो और थोड़ा सा क्या करो, सहन करो। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है ये, नहीं नहीं है हमारे लिए, थोड़ा सा सहन करो, सहनशीलता डे बाय डे बढ़नी चाहिए। चार माला जब करते करते नींद आती है, अब वो छह माला करते करते आनी चाहिए, छह माला करते करते आ रही, आठ माला करते करते नींद आनी चाहिए, सहनशीलता बढ़ रही, नींद को सहन कर रहे हैं। नहीं सोना नहीं चाहिए, नींद आ रही छोड़ो झोली माला सो जाओ, पहले सो लेता हूं फिर देखता हूं। जब करते वक्त बीच में कभी सोना नहीं चाहिए, पहले जब पूर्ण करना चाहिए। तो विक्षेप है, वेरी बैड, अपराध है। तो इस प्रकार से सहनशीलता बढ़ाना चाहिए। फिर अर्जुन क्या करेंगे, फिर अर्जुन तर्क करते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं, लेकिन भगवान आप ये सब बता रहे हो शरीर ऐसा है, अल्टीमेटली आप मुझे क्या बता रहे हो कि हिंसा करो, तो हिंसा तो पाप है। अब देखिए अर्जुन ने क्या क्या तर्क किया, आपको याद है? नहीं याद है, अभी बताया है। अब अर्जुन का आगे का तर्क है, पर भगवान ये जो आप मुझे बता रहे हो ये तो हिंसा है, और हिंसा तो पाप है। भाई आप पाप करने के लिए बोल रहे हो मुझे, ये अर्जुन पूछ रहे हैं 21वें श्लोक में। फिर भगवान उत्तर क्या देते हैं, मेरे उपदेश का पालन करके जो कुछ भी कर्म करोगे उससे कभी भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा उपदेश है। मेरे कहने पे जो कार्य करोगे, जो कर्म करोगे ना, वो कुछ भी कर्म हो मेरे उपदेश से है ना, तो उससे पाप नहीं लगेगा, मेरा उपदेश है। क्योंकि वो मतलब इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है कि कर्म ऐसे ही करो जो भगवान कृष्ण को पसंद है। मतलब ऐसे ही कर्म करो जिसका फल कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं, इसका अर्थ ऐसे होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें नहीं करनी चाहिए। तो कहेंगे भगवान भगवत गीता में आज बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग, बहुत सारे संप्रदाय ऐसा कहते हैं, भगवान ने तो भगवत गीता में हिंसा बताई, युद्ध बताया, इसलिए गीता को बैन करो, हिंसा तो पाप है, ऐसा बोलते हैं वो। और गीता में हिंसा करने के लिए कहा है, इसलिए भगवत गीता को बैन करो, ऐसे अनेक संप्रदाय ऐसे बोलते हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं पता है, यदि मेरे उपदेश का पालन तुम नहीं करोगे तो तुम ऐसे मरोगे। इतना भयंकर पाप इस संसार में बढ़ेगा, इतना अधर्म बढ़ेगा कि मनुष्य मनुष्य को खा डालेगा। धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को मनुष्य खा जाएगा। और तब वो सही परिस्थिति रहेगी, तब किसका उपदेश लेंगे, उस समय किसका उपदेश लेंगे, कोई उपदेश देने लायक भी नहीं रहेगा और ना ही हमारी लेने लायक परिस्थिति रहेगी। इसलिए ये अज्ञान है। एक और तो कहते हैं कि गीता पे हाथ रख के हम शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, है ना, और एक तरह बोलते हैं कि गीता हिंसा का विषय है। सबसे बड़ी हिंसा हम स्वयं अपने आप के साथ कर रहे हैं, हम इतने बड़े हिंसक हैं, इतने बड़े पशु जैसा व्यवहार हम करते हैं हमारे आत्मा के साथ। उसको भूखा प्यासा रखे है कई जन्मों से, पता नहीं है उसकी क्या भूख है क्या प्यास है, कुछ पता नहीं है, और सोच में पड़ रहे ज्यादा से ज्यादा शरीर के बारे में। 200 रुपए की बैग है, शरीर की कीमत 200 रुपया है, पूरा जीवन उसी में बीत रहा है। तो इस प्रकार से भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं, मेरे उपदेश से जो कर्म करोगे, चाहे हिंसा हो अहिंसा हो कुछ भी हो, उसमें पाप नहीं लगेगा। तो फिर अर्जुन क्या कहेंगे, जब भीष्म और द्रोण अपना शरीर छोड़ेंगे तो उनको दुख होगा ना, आप मुझे युद्ध करने की हिंसा करने के लिए बोल रहे हो, मैं युद्ध करूंगा भीष्म और द्रोण को मारूंगा, उनको दुख होगा ना, वो जब शरीर छोड़ेंगे तो उनको दुख होगा नहीं होगा, शरीर छोड़ते समय दुख होता है ना, तो उनको दुख होगा। अर्जुन पूरा आगे का प्रश्न करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं 22वें श्लोक में, यह 22 श्लोक तक भगवान जो कुछ भी विस्तार से कहते हैं उसका अर्थ ये होता है कि अर्जुन के शस्त्र और अस्त्र किसी भी आत्मा को मार नहीं सकते। जो अर्जुन कह रहा है ना कि इनको मैं मारूंगा तो इनको दुख होगा, इसका पूरे अभी तक 22वें श्लोक तक का सार भगवान बताते हैं कि तुम्हारे शस्त्रास्त्र कोई आत्मा को मार सकते हैं क्या? कोई भी आत्मा को शस्त्र और अस्त्र नहीं मार सकता। नयनं छिदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक, नहीं मार सकते। तो इसलिए कोई शोक करने का कोई कारण नहीं है, शोक क्यों कर रहे हो, नो रीजन। इस प्रकार से चर्चा और आगे बढ़ती, हमने तो केवल ये 30 श्लोक तक जो ज्ञान का विषय है 11 से 30 इसी की चर्चा की है, फिर आगे भगवान और विस्तारित रूप से समझाते हैं। हम और विस्तार से प्रत्येक शुक्रवार को 2-2 श्लोक पूर्ण करेंगे, इसलिए इन ब्रीफ आपको बताया है। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, भगवान कहते नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्त्यापो। आगे बोलिए, न शोषयति, वो कह रहे कि आत्मा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, आत्मा डिसॉल्व नहीं होता है। तो फिर आत्मा जब डिसॉल्व नहीं होता है, आत्मा जब जल से या किसी से डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो फिर आत्मा विलीन कैसे हो सकता है? हो सकता है? उसी को प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में लिखे कहे कि ये मायावाद है। कहते हैं बहुत सारी नदियां जैसे समुद्र में एक साथ चली जाती है और समुद्र में मिक्स हो जाती है, विलीन हो जाती है और फिर समुद्र हो जाता है, एक हो जाते है ना, एक हो जाती है सारी नदियां समुद्र में मिलके एक हो जाती है। उसी प्रकार से जब जीव आत्मा शरीर को छोड़ता है तो भगवान के शरीर में प्रवेश करता है और भगवान से एक हो जाता है। कोई कोई लोग कहते हैं भगवान बन जाता है, भगवान का रूप ले लेता है, भगवान बन जाता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं 22वें श्लोक में, जब विस्तार से चर्चा होगी तब और चर्चा करेंगे, पर यहां नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषयति मारुतः। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान बोल रहे, कोई डिसॉल्व नहीं होता है, मर्ज नहीं होता है। मर्ज नहीं होता है इसका अर्थ क्या है? विलीन होके भगवान नहीं बन जाता है, इसका मर्ज का अर्थ यहां पे है। ऐसा कभी नहीं होता है, वो हमेशा आत्मा इज अंश, भगवान का अंश है, वो अंश ही रहेगा और जब अंश रहेगा तभी जाके वो भगवान के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करेगा भगवान के धाम में। तो इस प्रकार से ब्रीफ में ये सब बताया है। तो इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से इसलिए समझना है क्योंकि इसमें पहली बात यह है कि यहां बताया गया है कि शोक किस बात पे करना चाहिए और किस बात पे नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने शोक किया था, जिसका उदाहरण हमने लास्ट समय लिया था, उनको शोक हो रहा था। कौन सा शोक हो रहा था प्रहलाद महाराज को? श्रीमद भागवतम के चर्चा हुई थी, वो बोले मुझे बहुत दुख होता है, हे भगवान आप बहुत सुंदर है, आप तो मेरे ऊपर बहुत कृपा किए बहुत, पर मैं यदि नरक में भी चला गया तो मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना दुख किससे होता है। नेक्स्ट टाइम पिछला श्लोक पिछला क्लास सुन के आइए, क्योंकि एवरी क्लास में पिछला क्लास रिपीट नहीं होगा, अच्छे से सुन के आइए। तो इस प्रकार से शोक किस पे करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, एकदम सत्य की व्याख्या करते हैं. व्हाट इज द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, सत्य क्या है, उस सत्य की भगवान व्याख्या कहते हैं. भगवान क्या कहते हैं, क्या है श्लोक की शुरुआत, नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपः. इसमें कह रहे हैं न तो ऐसा है कि किसी समय मैं नहीं था, मैं था. ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं नहीं था, मैं हमेशा था. मैं था मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण, आई अंडरसाइन मिस्टर लॉर्ड कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण घोषित करता हूं कि मैं नित्य था. भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान कृष्ण एज ए लाइट कभी तो था, मैं भगवान कृष्ण एज ए ज्योति कभी तो था, बाद में उसमें से भगवान हो गया निकल के, ऐसा कहा है. मैं निराकार था, आकार बन के आया, पर एज इट इज मैं था. यदि इनको बोलना होता तो बहुत डिटेल में बोलते थे कि मैं ऐसा रहता हूं, हमेशा लाइट के रूप में रहता हूं और फिर कृष्ण बन जाता हूं. टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं जन्म कथाएं भगवान की, हमने देखा बचपन में, अभी भी दिखाते होगे तो पता नहीं. देवकी और वसुदेव, अंधेरी एकदम गुफा टाइप है, एकदम भयंकर घना अंधेरा है, बड़े दुखी है, चिंताग्रस्त है कि कौन सा आके क्या करेगा, बस पड़े हुए है, चिंतित है. उतने में उस गुफा को, उस कैद को, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जेल को क्या कहते हैं हिंदी में, कारागृह, बंदीशाला, बंदीशाला कहते हैं. तो उस बंदीशाला, उस कारागृह में पूरा घना अंधेरा है, लेकिन बराबर कौंस ने क्या किया है पता है आपको, वो घने अंधेरे वाले उस कारागृह को एक खिड़की छोड़ी है, एक खिड़की बांधी है उसने, उसने बनाई है. उस खिड़की से एग्जैक्टली क्या होता है पता है, लाइट आता है, आता है ना, और वो लाइट आता है ऐसे और वसुदेव और देवकी के ऊपर पड़ता है और उस लाइट में से कृष्ण हो जाता है. हमने बचपन में ऐसा देखा है, आज भी लोग टीवी में ऐसा ही देखते हैं. ये सत्य नहीं है, पर इस श्लोक में भगवान ने सत्य बोला है, नत्वे वाहम जात, मैं हमेशा इसी रूप में रहा हूं और रहता हूं. इसलिए भगवान कैसे रहते, कैसा जन्म लिया उन्होंने, जन्माष्टमी के समय आपने सुना है कथा, वो सत्य है. भगवान कह रहे मैं हमेशा था, मतलब आपको समझना चाहिए कि भगवान जन्म एज ए कृष्ण लेते हैं. कैसा जन्म लेते हैं, वासुदेव के मन में विचार आ जाता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की, वृष्णि और सुतपा के रूप में अनेकों तीन जन्म में उन्होंने तपस्या की है. भागवतम हम नहीं करेंगे, पर उन्होंने तपस्या की है, तपस्या के बल पे भगवान को उन्होंने कहा कि आप ही, आपके ही जैसा पुत्र चाहिए. बोले कहां से बनाऊं मेरे जैसा, मैं एक ही हूं संसार में, केवल एक ही है, एक ही भगवान है, कि मैं मुझे ही आना होगा. तो इस प्रकार से भगवान जन्म लेते, कैसे लेते हैं, भगवान वसुदेव के मन में एक विचार उत्पन्न करते हैं. भगवान अपनी शक्ति जो है वसुदेव के मन में प्रवाहित करते हैं, वसुदेव के मन से वो शक्ति किसके मन में जाती है, देवकी के मन में जाती है. देवकी के मन से वही विचार, वही शक्ति देवकी के हृदय में जाती है, और देवकी के हृदय से बालक का जन्म होता है. ये दिव्य जन्म, इसलिए भगवान भगवद गीता में आगे क्या कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य है. यहां वो कह रहे कि नत्वे वावम जातु नाशम, कि मैं हमेशा रहा हूं क्योंकि दिव्य हूं, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है. इस प्रकार से भगवान जन्म लेते हैं, और जन्म ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइट में से जन्म लिए है, इसलिए भगवान वास्तव में ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति वास्तव में भगवान है, और ये जो कृष्ण है ये तो बाद में माया के प्रभाव से भगवान हो गए. ये मायावाद है, ये टोटली रॉन्ग फिलोसफी है. या कुछ ऐसा सोचना कि पहले निराकार थे फिर आकार ले लिए, ऐसा कृष्ण ने कभी कहीं पे भी नहीं बताया। बल्कि कृष्ण ने एक श्लोक 7वें अध्याय में 24वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, कहते अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। आप पढ़ सकते हैं 24वां श्लोक 7वें अध्याय का, मत पढ़िए अभी समय कम है। तो 24वां श्लोक है 7वें अध्याय का, उसमें भगवान कहते बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते है, क्या सोचते है कि मैं पहले निराकार था। कौन सोचते है ऐसा, हाँ जोर से बोलिए, हाँ बुद्धिहीन मनुष्य, ये उन्होंने ही बोला है, कृष्ण ने, दूसरे तीसरे किसी ने नहीं बोला है। वो क्या कहे है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त निराकार, व्यक्तिमापन्नम कोई आकार नहीं, कोई निर्गुण, मन्यन्ते माम बुद्धया, इस प्रकार से अल्प बुद्धि वाले सोचते है कि पहले मैं निराकार था और फिर आकार ले लिया, वो अल्प बुद्धि वाले है। और वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को समझ ही नहीं सकते, अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को वो समझ नहीं सकते, क्योंकि वो ये समझ बैठते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वास्तव में कोई निराकार ब्रह्म ज्योति ये सब कुछ है, उसमें से कृष्ण उत्पन्न हुए, पर कृष्ण ऐसे नहीं उत्पन्न हुए। और फिर जब कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म होने के पश्चात क्या हुआ, सब डर गए दोनों माता पिता, अब क्या होगा, कौन सी इनको मारेगा, अभी कितनी भयंकर दशा हो जाएगी, क्या करेंगे, कैसा होगा। तो भगवान, वो तो भगवान है, सब बुद्धि वही देते, ददामि बुद्धि योगम तम। वसुदेव जी के मन में उत्पन्न आया भाव, उत्पन्न हो गया कि चलो इनको तुरंत ले जाते हैं गोकुल, लेकिन कैसे ले जाएंगे, हाथ में तो बेड़िया लगी हुई है, कैसे ले जाएंगे। लेकिन बेड़िया जैसे ही कृष्ण को पास में लिए, बेड़िया खुल गई। कई आचार्यगण बताते हैं तात्पर्य में भागवतम के सारार्थ दर्शनी और इस प्रकार के ग्रंथों में कि अरे जिसका केवल नाम लेने से ये संसार की इतनी सारी बेड़िया टूट जाती है, तो उनको साक्षात जिसके जिसने हाथ में ले लिया ये तुच्छ बेड़िया क्या उनको पकड़ के रखेगी। उनका केवल नाम ले लो तो सारे संसार की, सारे त्रिविध ताप की संसार रूपी बेड़िया टूट जाती है, भव सागर की बेड़िया टूट जाती है। तो ये कौन सी बेड़ी है, एक मेटल की बनी हुई, इसका क्या है, इतना भगवान का नाम भी पावरफुल है। तो इसलिए भगवान को हमको जानना चाहिए, नत्वे वा, इसलिए कह रहे कि मैं हमेशा रहा हूं। फिर भगवान, फिर वसुदेव जी आगे जाते तो देखते हैं दरवाजा बंद, तो दरवाजा खुल जाता है भगवान की शक्ति से। तो फिर आचार्यगण कहते हैं अरे ये क्या तुच्छ दरवाजा, इस भगवान का तो केवल आप नाम ले लो, कौन सा नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे भगवान का इनका केवल आप नाम ले लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, ये द्वार क्या चीज है उसके सामने कारागृह का कंस के। फिर आगे जाते हैं तो वो देखते हैं ये तो अभी तक पूरे सैन्य यहाँ बंदूक लेके खड़े थे, कि दिन रात जाग रहे थे आंख में तेल डाल के कि जरा भी झपकी न लग जाए, इतने अलर्ट हजारों की सेना, ये वसुदेव जी बाहर न निकल जाए। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति भगवान को इन्होंने ले लिया, वसुदेव जी ने पास में कृष्ण को अपने लाला को, तो ये जितना भी सैन्य सारे जो बैठे थे सिपाही पहरा दे रहे थे सबको, सब मोहित हो गए। तो आचार्य कहते हैं अरे जिनकी लीलाओं से साक्षात ब्रह्मदेव मोहित हो गए उनके सामने ये राक्षस क्या करेंगे, इनका तो मोहित होना साधारण बात है। तो इस प्रकार से वो वसुदेव जी उनको लेके गए। और फिर यशोदा जी के, पूरी कथा हम नहीं कहेंगे, यशोदा जी के पास गोकुल में छोड़ के आए, और जैसे ही वो छोड़ के वापिस आए पहुंच गए क्या हो गया, फिर से बेड़िया लग गई, फिर से दरवाजे बंद हो गए, फिर से बेड़िया हाथ में लग गई, ऐसा हुआ ना। तो फिर से जब बेड़िया लग गई तो इसका अर्थ क्या है,
दूर हो गए तो
भगवान कृष्ण को जब छोड़ के आए तो तुरंत बेड़िया पकड़ ले लिए, बेड़ियों ने पकड़ लिया। जैसे ही हरि नाम को छोड़ देंगे एक क्षण भी नहीं लगेगा, जैसे ही वसुदेव जी ने एंट्री किया फटाक, जैसे ही कृष्ण नाम महामंत्र को कहीं रख के आ जाएंगे, छोड़ देंगे, बाद में करते हैं थोड़ा सा दूसरा काम कर लेते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए दूसरा काम पहले करेंगे और पहला काम दूसरी बार बाद में करेंगे, तो तुरंत सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, हाथ पैर सारे बांधे जाएंगे और माया देवी भयंकर विद्रूप रूप लेके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो भगवान का नाम वसुदेव जी को नहीं छोड़ा तो हम, तो इसलिए भगवान का नाम नित्य लेना चाहिए। हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे राम राम राम।
इसलिए नत्पे वाहम जातुनाशिन, कभी ऐसा मत समझो कि मैं नहीं हूं, मैं हमेशा हूँ। कौन से रूप में हूँ? दयालु भी तो है वात्सल्य, भगवान भक्तों के प्रति एक बहुत दयालु है, भक्त वत्सल है। इधर कह रहे हैं नत्वे वाहम जातु नाशम, ऐसा तो कभी नहीं था, मैं कभी नहीं था, हमेशा मैं रहा हूं। अब रहे हैं तो हमको क्या फायदा, कैसे समझेंगे, कहां पकड़ेंगे, कहां ढूंढेंगे, कहां मिलेंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य अभिन्नत्वाम नामना, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, मतलब एक ही है। तो ऐसे भगवान जब बोल रहे कि मैं हूं, ऐसा एक क्षण भी नहीं है कि मैं नहीं था, इसका अर्थ यह कि भगवान नाम के रूप में ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी डायल कीजिए, भगवान इज रेडी। हमको डायल करना पड़ेगा इतना ही करना है, हमको डायल करना है नंबर बस। तो इस प्रकार से भगवान को हमेशा ही भगवान के नाम के रूप में सोचना चाहिए, भजना चाहिए, समझना चाहिए और भगवान का हमेशा स्मरण और गुणगान करना चाहिए। भगवान बार बार इस पूरे गीता में देखेंगे तो कितनी बार कहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रकृति का अधिष्ठाता हूँ, मैं सब कुछ हूँ। यहाँ कहे कि ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं हूँ, मैं हूँ 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 सब बोल दिया। फिर आदमी सोच में पड़े कभी तो नहीं होंगे है ना, मनुष्य का विचार विपरीत बहुत होता है, उलट दिशा बहुत जल्दी हमारा मन पकड़ता है। तो अच्छा मैं ये हूँ, उसमें हूँ, इसमें हूँ, ये हूँ, वो सब बोल रहे भगवान, तो मनुष्य ढूंढने लग जाएगा कि एक आधी बात तो ऐसी भी जिसमें नहीं होगे, तो पूरा जीवन वो ढूंढने में बिताएगा कि भगवान किसमें नहीं है। तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट में पहले ही बता दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं हूँ, मतलब मैं हरदम हमेशा हर वस्तु में सब कुछ मैं हमेशा हूँ नित्य। तो इसलिए इसी भाव में रहना चाहिए हमेशा कि भगवान नित्य है। प्रभुपाद जी ने कठोपनिषद का श्लोक भी तात्पर्य में उसका चर्चा की है। तो इस प्रकार से आगे कहे नत्वम नेमे जनाधिपः, प्रत्येक जीवात्मा नित्य रूप से है। नत्वम नेमे, ऐसा कभी नहीं था कि तुम भी नहीं थे, मतलब आगे भगवान ने कहा है कि जीव की क्या अवस्था है, जीव कैसा है, ये कैसा। इसलिए यहाँ कह रहे कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, मतलब हमारा दोनों का नित्य रिलेशनशिप है कि नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि नहीं, इसका अर्थ है ना कि रिलेशनशिप हमारा दोनों का नित्य है। पर यहां अब बात गड़बड़ ये हो जाती है कि हमने किसके साथ रिलेशनशिप रखा। तो हमारा जो रिलेशनशिप है मिस्टर बॉडी, मिस्टर माइंड और मिस्टर इंटेलिजेंस के साथ बहुत गहरा है और उधर हमारा रिलेशन थोड़ा डाइल्यूट है कभी कभी। तो अमावस पूर्णिमा कहते हैं ना, कभी कभी हमारा वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ कहते कि ऐसा कभी नहीं था, तुम नहीं थे, इसका अर्थ है कि ये सारे जो राक्षस है, ये यहाँ पे राजा कहा है न त्वम नेमे जनाधिपा, जनाधिपा मतलब राजे लोग, ये जो सब तुम लोग थे ना, ये सब राजे लोग देख रहे हो ना, ये भी ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे, ये भी थे। शास्त्रों में हमने ठीक से देखा तो हम देखते हैं कि प्रत्येक राजा का कुछ ना कुछ पिछला जन्म बताया है, फलाने युग में उसका ये जन्म था, वो जन्म था, भीष्म देव कौन थे, देव नाम के वसु थे वो पहले के जन्म में। तो इस प्रकार से हम ये पहले के जन्म में कुछ ना कुछ, मतलब कई जन्मों में कुछ ना कुछ चलते आ रहा है गणित। और कभी कोई जन्म में कुछ भी नहीं और सीधे गोलोक धाम में है तो भी भगवान के परिकर के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में फिर भी रिलेशनशिप है। तो इसका अर्थ ये है कि रिलेशनशिप रखना चाहिए भगवान के साथ, बहुत आवश्यक। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
राम राम।
इस श्लोक का भावार्थ ये है, फाउंडेशन बेसिक सार ये है कि भगवान कह रहे मैं नित्य हूँ, मैं साकार रूप में हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं किसी निराकार वस्तु से उत्पन्न हुआ नहीं हूँ या लाइट वगैरह से उत्पन्न हुआ नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ और आप भी नित्य हो, हमारा और आपका कुछ रिलेशनशिप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो वो क्या रिलेशनशिप है, कैसे डेवलप करे, ये पूरी भगवद गीता उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जान ही सकती है, निवृत्ति है। प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि इस मन का आसक्ति मतलब क्या है, मन को कोई चीज अच्छी लग जाती है तो उसको वही चाहिए, है ना, वही चाहिए, उसको टेस्ट आ जाती है मन को, तो उस मन को हाइयर टेस्ट दो। जो टेस्ट अभी मैं रोज दाल चावल खा रहा हूँ, रोज दाल चावल खा रहा हूँ, किसी कहीं पे आया अभी यहाँ पे आ गया शुक्रवार के क्लास में तो अच्छी मसाले की खिचड़ी है या कभी जन्माष्टमी का फीस्टिंग प्रसाद है भगवान का, तो वो जब प्रसाद मैंने खा लिया तो मन बोलेगा अरे क्या रोज दाल चावल खा रहे हो, ये हाइयर टेस्ट है, अब इसको प्राप्त करो। तो आसक्ति जिसको कहा गया है केवल आ सकती है, जा नहीं सकती, वो जा सकती है लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं से कहीं पे जो हायर टेस्ट है उसको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, केवल एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार यदि उस हायर वस्तु को टेस्ट कर लिया तो अपने आप आगे का काम मन करेगा, मन क्या करते रह जाएगा, वो टेस्ट को लेते जाएगा, बार बार उसको चाहिए रहेगा, वाह वाह वाह, दो और जप और आरती और सत्संग। लेकिन इसीलिए कहते कि आसक्ति से, इंग्लिश में कहते अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब आसक्ति, डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति, तो अटैच डिटैच होने के लिए अटैच होना पड़ेगा, यदि डिटैच होना चाहते हो तो अटैच होना पड़ेगा, किससे अटैच होना पड़ेगा, हायर टेस्ट से अटैच होना, कृष्ण नाम से, भगवान कृष्ण से, सत्संग से, आध्यात्मिक सेवाओं से अटैच हो जाएंगे तो अपने आप डिटैचमेंट बढ़ेगी, है ना। तो शास्त्र में प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने प्रवचन किया, वहां पे तो इम्पॉसिबल, आसक्ति छोड़ो बोले तो इम्पॉसिबल लेकिन प्रभुपाद जी की इतनी शुद्धता और साक्षात कृष्ण कृपा मूर्ति है प्रभुपाद जी, उन्होंने सबकी आसक्ति दूर कर दी, है ना, आसक्ति को जा सकती कर दिया है ना, वो चली गई आसक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।